राम यह प्रवचन परम श्रदय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30/12/93 प्रातः 9:30 बजे बम्बई में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
भगवद गीता में योग का वर्णन आया है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री कृष्णार्जुन संवाद ऐसा आया योग शास्त्र। तो गीता का योग बहुत विलक्षण योग है। जैसे दूसरे योग होते हैं उसमें प्राणायाम करो, कान को भी बंद करो, आंखें भी बंद करो, मन को भी रोको, ऐसे विशेष संयम की बात आती है। इस तरह की क्रियाओं से योग की सिद्धि होती है। उस योग की दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है, एक व्यथित अवस्था मनुष्य व्यवहार की स्थिति होती है। एक में चुपचाप बैठ जाते हैं, दूसरे में संसार का काम धंधा करते हैं, ऐसी दो अवस्थाएं होती है। भगवत गीता के योग में ये दो अवस्था नहीं होती है, वो एक ही अवस्था होती है। ऐसा विलक्षण गीता का योग है। उस योग को थोड़ा आप ध्यान दे करके सुनेंगे तो बड़ी सरलता से समझना आ जाएगा। भगवान ने योग की परिभाषा दो जगह की है, एक छठे अध्याय में की है, एक दूसरे अध्याय में की है। तो छठे अध्याय में दुख संयोग वियोगम योग संगीतम ये पद आता है। वो योग क्या है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुखों के संयोग का वियोग है, उसका नाम योग है। वो दूसरा अध्याय में आया है कि समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। योग की खास परिभाषा है ये। अपने अपने ग्रंथों में अपनी अपनी परिभाषा होती है। जैसे योग यहाँ पर इसका नाम हुआ, एक आयुर्वेद का ग्रंथ है योग चिंतामणि है, उसमें दवाओं के मिलाने का नाम योग होता है, नुस्खा होता है, उसका नाम योग होता है। तो ऐसे गीता की ये परिभाषा है योग की। पातंजलि योग दर्शन में योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। यहाँ कहते हैं दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग हो। जहाँ दुखों का वियोग संयोग का ही वियोग हो, उचित समझे तो एक सज्जन परीक्षा करने वाले घूम कर देख ले कि चारों तरफ आवाज ठीक आती है ना, नहीं आती है तो कमी क्या है, उसको हम पूरी करें।
अरे आ रही है
नारायण नारायण नारायण। तो दुख से संयोग का ही वियोग हो, उसका नाम योग है। अब दुख क्या है? तो दुखालय बताया है भगवान ने संसार को, इसको दुखालय मापनवंदी महात्मा न संसिद्धि परमांगता माम प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। ये जो जन्म है हमारा संसार में, ये दुखालय है संसार। जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, तो वो आलय नाम स्थान का है। पुस्तकों का स्थान पुस्तकालय, भोजन का आलय स्थान भोजनालय, ऐसे ही वस्त्रालय, वस्त्रों का स्थान होता है वस्त्रालय। ऐसे संसार का भगवान ने दुखालय नाम दिया है। जैसे कोई स्थान हो तो ऊपर एक हेडिंग लिख देते हैं कि भाई इसमें ये है, ये दुखालय, ये वस्त्रालय है, भोजनालय है, औषधालय, ऐसा। तो संसार के लिए भगवान ने दुखालय कहा है। तो इसमें दुख ही दुख है, सुख तो दुख, एक दुख की अवस्था ही सुख है, सुख असली सुख नहीं है। जो दुख का कारण है उसको हम लोगों ने सुख नाम रख लिया है, जो दुख का खास कारण है। आप ख्याल करके सुने, संसार के पदार्थों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का जो संयोग होता है, उस संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है उसका परिणाम दुख होता है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतो मम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। वो राजस सुख होता है जो संबंध जन्य सुख होता है। जैसे भूख लगी तो भोजन का संयोग सुख होता है, प्यास लगी जल के संयोग का सुख होता है। ऐसे जिस किसी की इच्छा हुई और इच्छा के अनुसार वो पदार्थ मिला तो सुख हुआ। तो ये सुख राजस सुख कहा है गीता ने सारवे अध्याय में। राजस सुख होता है, उसके लक्षण बताए कि पहले आरंभ में तो सुखदायी दिखता है पर दूसरा परिणाम में दुख होता है, फिर सदा के लिए दुख होता है। वो सुख नहीं होता है। जो सुख में लगे रहते हैं वो सुख चाहते हैं, कौन से सुख को, जो कि दुखों का कारण है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो ने होते संबंध जन्य जितने भोग हैं वे दुखों के कारण है। ये पांचवा ध्यान बताया, ये ही संस्पर्श जाप होगा, संबंध जन्य जितने भोग होते हैं वे दुखों के कारण होते हैं। तो दुखों के कारण है वो सुख, दुख ही दुख उत्पन्न होगा इसमें, दुख ही दुख। और ऐसे दुख में जो सुख मानते हैं वो सुख की इच्छा से 84 लाख योनि में भटकते हैं और दुख ही दुख भोगेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम पदार्थों के संयोग से सुख ले लें। तो उनको दुख भोगना ही पड़ेगा, वो दुख से कभी बच सकता ही नहीं। अगर दुख से बचना चाहते हैं तो इस राजस सुख से आप ऊंचे उठो। हमें बड़ा दुख होता है, विचार करता हूं तो आप सज्जनों की अवस्था के ऊपर सोचता हूं तो मेरे को दुख होता है कि क्या बात हो गई है, क्या करें। आज ये लोगों ने सुख मान रखा है, उस सुख के लिए वंश का नाश कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, संतान न हो ऐसा कर रहे हैं। कौन सुख तो भोगते रहे संतान न रहे, केवल संबंध जन्य सुख की आसक्ति आसक्ति बढ़ रही है, बढ़ा रहे है, सुनते नहीं है किसी की। क्या दशा होगी देश की भगवान जाने। हमें बड़ा दुख है इस बात का, करें क्या, मानते हैं नहीं, गुरुपाद तक करते हैं। पाराशर स्मृति में लिखा है 4 महापातक होते हैं, सबसे बड़े ब्रह्म हत्या बताइए, ब्राह्मण की हत्या कर देना ब्रह्म हत्या, उसके समान ही सोना रत्न आदि की चोरी, ऐसे ही मदिरापान, ऐसे गुण पत्नी गमन, ये पाप है। तो चोरी सबकी सब है परंतु रत्न और सोने की चोरी महापाप है। ऐसे व्यभिचार पाप ही पाप ही, गुरु पत्नी गमन महापाप है। ऐसे हत्या करना पाप ही पाप है। पर ब्राह्मण के जो भी पढ़ा लिखा है जिसे दुनिया को सुख होता है, दुनिया को रास्ता मिलता है, उसकी हत्या कर देना महापाप है। ऐसे ही मदिरा पान महापाप है। ये महापाप चार होते हैं। गर्भपात करने वालों को दुगुना पाप लगता है। जब पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने, उसे दुगुना गर्भपात का पाप होता है। उसको लोगों ने सभ्यता मान रखी है। बड़ा भयंकर पाप होता है। मैं जहां जाता हूं, एक विषम बात आ रही है, आप क्षमा करेंगे सुन लेंगे। मैं कहता हूँ भिक्षा मेरे को दो, तो जिस घर में गर्भपात हुआ है घर में, उस घर की भिक्षा हमारे को मत देना। उस घर का अन्न जल भी महान पातक करने वाला है, मेरे को इस पाप से बचाओ। अब अपने विषय पर आ जाता हूँ। ये बात आई कि क्या दशा होगी, कितना भयंकर पाप कर रहे हैं, और वो सभ्यता का अंग हो गया है एक। तो पाप से बचो, अपने पाप से बचो, एक पुस्तक भी लिखा छोटा सा। तो पाप से बचो भाई और बहनों, कृपा करो। तो ये दुखालय संसार है, तो संसार का सुख भोगने के लिए वंश का नाश कर रहे हैं। क्यों सुख भोगे, बच्चे पालन करना के भी दुख ना हो, इतने डरते हैं। महान भयंकर नरकों का 84 लाख जोड़ने का दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, कोई बच सकता नहीं। तो उस दुख से आप बचो, तो आप संयम करो। आप अगर संतान नहीं चाहते हैं, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप स्त्री पुरुष संयम में रहो, अलग रहो। आप पहले वो सुख मत लो, सुख तो लेना चाहते हैं, वंश का नाश करते हैं। संयम रखो आप। अगर भाई हम प्रजा नहीं बढ़ावे तो संयम रखो, शरीर तो ठीक होगा। तो ये बात याद आ गई, यही संसर्जा भोगा दुख योने वे दुखों के कारण है। वो दुखों का बीज आप बोते हो, आ खेती दुखों की भयंकर खेती होगी। दुखालय कहा और यहाँ दुख योने होते, दुख का कारण है। जैसे बीज बोता है वैसे खेती होती है। ये दुखों का कारण है, दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। 84 लाख जोड़ी का दुख, नरकों का दुख, महान भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। दुखियों ने एक जोर लगा दिया है कि बिल्कुल केवल दुखों का ही कारण है। न तेषु रमते बुधा, विवेकी उसमें रमण नहीं करता। इसमें सुख में रमण करोगे तो दुख ही दुख पैदा होंगे, जिन दुखों का कोई अंत नहीं होगा। तो ये दुखालय है, और दुखालय नहीं है, दुखियों ने होते दुखों का कारण है। आद्यंत वंत, ये प्रत्यक्ष सबके अनुभव है कि ये सुख है उसका आदि होता है, अंत होता है। और सुख वो मिलता है जिसका आदि और अंत नहीं, सदा ही सुख रहे। सुख सुखम आतंतिक सुख, जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं, ऐसा भगवत समझते। सुख संपूर्ण मनुष्य मात्र को मिल सकता है। भाई हो चाहे बहन हो, और हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, किसी समुदाय का मनुष्य कौन हो, सब मनुष्यों को वो महान आनंद जिसमें दुख का लेश ही नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के स्पर्श का भी जहां संभव नहीं है, ऐसा महान सुख सबको मिल सकता है। परंतु इस सुख को छोड़ने से, ये सुख का त्याग करने से इतना महान सुख मिलता है। इतना तो सुख मिलता है, इतना आपका ध्येय भी शुद्ध हो जाता है कि भाई हमारे संतान ज्यादा में हो, ठीक है। और सुख अत्यंत सुख मिलेगा, बड़ा भारी सुख। सुख अत्यंत बुद्धि यत्र से तत्व। ये 23वां श्लोक है 6वें अध्याय का। तो इसमें ऐसी बात लिखी है, आप देखें उसका अर्थ भी विचार करें। तो ऐसा महान सुख आपको हमारे को मिल जाए। अब उस सुख के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो महान सुख मिल जाए। सुख की भूख मात्र प्राणी में है, वृक्षों में भी है। अनुकूलता मिलती है तो वृक्ष हरे हो जाते हैं। खेती में भी अनुकूल जल मिलता है तो पत्ती और तरह की हो जाती है। कुछ दिनों से वर्षा नहीं होती, उनके पत्ते कुमलाए रहते हैं, रात में वर्षा हो जाए, सुबह ही आप देखो उनकी पत्ती बड़ी विचित्र हो जाती है, उन पौधों में एक प्रसन्नता आ जाती है। तो मातृ स्थावर जंगम सुख चाहते हैं, इस सुख से अत्यंत बड़ा भारी सुख जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति कैसे हमारे को हो, वो बात मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान देकर के सुने। तो दुखाले जो संसार है इससे आप उभर हुए, इस सुख का आप त्याग करो। जैसे आप खेती में बीज बोते हैं तो बीज के अनुसार ही खेती होती है, बाजरा बो तो बाजरा होगा, गेहूं बो तो गेहूं होगा, जो बोलो तो जो होगा, ज्वार बोलो ज्वार होगी, जो बीज बोगे वो खेती होगी। परंतु ये आपका जो इधर शरीर खेत है, ये खेत ऐसा है कि आप सुख का त्याग करके अपना जीवन बिताओगे तो उस सुख का बीज अत्यंत सुखागाड़ी मिलेगा। संसार के तुच्छ सुख का त्याग करने पर अत्यंत सुख मिलेगा, जिसका कभी अंत नहीं होता, सदा के लिए सुखी हो जाओ, ऐसी विलक्षण बात है। ऐसा ही मानव शरीर है, इस बात इसकी महिमा है। तो वो तत्व कैसे मिले वो मैं बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर के सुने। मैं बात बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुने, ये कोई मेरा मुहावरा नहीं है, मेरी आदत नहीं है, कृपा कर इस बात पर ख्याल करें, इस वास्ते कहता हूँ। आप इस संसार से अलग हैं, संसार के शरीर मिलते हैं और छूटते हैं, मिलते हैं और छूटते हैं, ये सबका अनुभव है। अगर शरीर के छूटने का मिलने का अनुभव न हो तो आपको साक्षात अनुभव है, आप और हम एक दिन बालक थे, अपने वो कहते मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बालक हूँ, ऐसा स्वयं कहते थे। जब जवान हो जाते हैं तो वो नहीं कहते कि मैं बालक हूँ, बूढ़े हो जाते तो मैं नहीं कहते कि बालक हूँ। तो बालक बना छूटा, जवानी आई, जवानी छूटी, वृद्धावस्था आई, रोगी बना छूटा, निरोग हुए, निरोग बना छूटा, रोगी हुआ, तो ये बदलता है ना। इतनी मैं सरल बात कर रहा हूँ, बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बात, ऊंची से ऊंची बात बड़ी सरलता से बताता हूँ, क्योंकि अवस्थाओं का संयोग और वियोग होता है, ये अनुभव है, सबको अनुभव है। परंतु आप दूजे हो जाते हो क्या? क्या बचपन में आप दूजे थे, जवान अवस्था में दूजे थे, वृद्ध अवस्था में आप दूजे होते हैं, धनवत्ता में आप वही रहते हो, निर्धनता में वही रहते हो, रोग अवस्था में आप वही रहते हो, निरोग अवस्था में आप वही रहते हो, आप एक हो, एक रहते हो। ये ऊपर से बदलती है चीजें, बदलने वाली के साथ आप एक नहीं हो। अगर ये अनुभव कर ले आपको दुख नहीं होगा। भाई संयोग है वियोग है, ये दो चीज होती है, तो संसार में संयोग वियोग दोनों है। आज मैंने सुबह बताया था कि ये संयोग वियोग है, उसमें वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। ये आप कृपा कर थोड़ा ध्यान दें, आपका हमारा मिलन हुआ तो इसे मिलन से पहले आपका हमारा परिचय नहीं था, वियोग था, फिर मिल गए संयोग हो गया, अब सत्संग के बाद अब चले जाए वियोग हो गया, फिर संयोग हो जाए सत्संग में आ जाए, तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होते होते अंत में वियोग होगा, शरीर चला जाए तो वियोग होगा, और आप यहाँ रह गए हम और जगह चला तो वियोग होगा। तो वियोग पहले था, वियोग पीछे रहेगा, और अब भी वियोग हो रहा है। जैसे सत्संग का समय रखा भाई यहाँ 9:30 बजे सत्संग होगा, अब 9:30 बजे से शुरू हुआ तो अभी 52 मिनट आ गए हैं, तो 52 मिनट वियोग हो गया है सत्संग का। ध्यान दिया आपने, 30 मिनट बोलने 8:30 होते 9:30 होते हैं तो 52 मिनट आ गए, 22 मिनट आ गए, तो 22 मिनट इसका वियोग हो गया ना, ये घट गया, तो इसका वियोग हो रहा है। वियोग इतना अनित्य है कि निरंतर होता है, तो संयोग रहता नहीं है, वियोग होता है। तो वियोग नित्य है, पहले वियोग पीछे वियोग, और संयोग अवस्था में वियोग सत्संग वियोग हो रहा है। एक घंटा पर पूरा हो गया पर चलो सही परिस्थिति पूरा हो गया तो वियोग हो जाता है। ऐसे ही सज्जनों ख्याल करें अपने मन में जतयुग हम जी रहे हैं, ये जो मन में है कि हम जी रहे हैं ये बात झूठी है, हम मर रहे हैं ये सत्य है। क्षमा करना, आप बुरा मत मानना, मैं आपको दुख देने के लिए हम नहीं बोलता हूँ। जितनी जितनी अवस्था अपने को आ गई उतने अवस्था तो हमें जीने में खत्म हो गए ना, उतने वर्ष तो चले गए, अब बाकी कितना इसका तो पता नहीं है, परंतु इतने वर्ष चले गए इतनी विश्वास का पक्का फर्क है कि मरे मर गए हम, उतने तो मर ही गए, पूरा होते ही पूरा मर जाएंगे। तो बच्चा जन्मता है उस समय में 90 वर्ष की अवस्था है और 5 वर्ष का हो गया तो क्या अब 90 वर्ष रहे, 85 वर्ष रहे, तो 5 वर्ष मर गया ना। आप हम आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है। अगर इसमें हमारे को 24 मिनट हुए हैं तो 24 मिनट हमारे जीवन में कम हो गया है, 24 मिनट ये मौत नजीक आ गई है, तो पहले वियोग था पीछे वियोग है अभी नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। तो संसार का संबंध वो तो वियोग में बदलता है, तो वियोग ही नित्य है संसार का, संयोग नित्य नहीं है। खूब अनुभव करो, ये वो ऐसी बात नहीं लिखी हो मान लो, ऐसी बात नहीं है, ये तो बात बलून अनुभव की बात है। तो संसार का वियोग है वो सच्चा है और परमात्मा का योग है वो सच्चा है। उस योग को गीता ने योग बताया, जो परमात्मा के साथ संबंध है उसको योग कहा। योग का तात्पर्य कि भगवान के साथ में एकता होना, वो एकता आपकी नित्य है, आपका उधर दृष्टिकोण नहीं है, परंतु परमात्मा के साथ कभी किसी का वियोग हुआ नहीं है नहीं और कभी वियोग होगा नहीं। परमात्मा के हम अंश है, वो परमात्मा से वियोग नहीं हो सकते, परमात्मा से योग है, उसको नित्य योग कहते, उसका नाम योग कहती गीता, योग उसको कहती परमात्मा के साथ संबंध। और वो चित्तवृत्ति निरोध आदि योग है, वो इस योग के साधन है तो वो भी योग है। पर गीता आखिरी योग बताती है, अंत में योग क्या है कि परमात्मा के साथ नित्य योग है हमारा। संसार के साथ जितना संयोग माना है उतना ही हमारे को वियोग मालूम देता है, और ये संयोग को छोड़ दे तो परमात्मा के साथ नित्य योग माना है, उस नित्य योग को गीता योग कहती है। तो एक परिभाषा दुख है, दुख संयोग वियोगम, और एक है समत्वम योग पूछे थे, तो सब क्या है, सब है परमात्मा। इहैव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, यहाँ जीवित अवस्था में ही लोक मनुष्य संतों ने इस संसार को जीत लिया, संसार को जीत लिया, वो संसार पर विजय हो गई। किसकी? जो सांसारिक सुख को नहीं चाहता उसकी संसार पर विजय हो गई, अब सुख की गर्ज नहीं रही, उन्होंने संसार पर जीत लिया। क्योंकि संसार को जीते कहाँ हुए, परमात्मा, परमात्मा क्या है कि परमात्मा नित्य रूप है, सत रूप है, विषमता से रहित है, सब रूप है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और विषय ऊंचा उठते योगा सम, तो सम निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म से था, फिर ब्रह्म से तो बात उस समता का नाम योग है, ये समत्व है उसमें से तो होगा समत्व योग पूछते। तो संसार से वियोग होने पर योग हो जाएगा और परमात्मा स्थिति होने पर योग हो जाएगा, ये दोनों बात है। इसमें चाहे आप संसार का वियोग कर ले तो परमात्मा में स्थिति सदैव हो जाएगी, और चाहे परमात्मा में स्थिति कर ले तो संसार के दुखों का वियोग सदैव हो जाएगा। ये गीता का योग है, गीता की सार बात है, योग शास्त्र है। तो ये दो परिभाषा करी भगवान ने, तो दुखालय संसार से ऊंचे उठ जाए महान सुख मिल जाएगा, और सुख रूप परमात्मा में सिद्ध हो जाए तो सुख मिल जाएगा, दुख सब छूट जाओगे, दोनों बातें होगी, संसार के साथ वियोग उसका सही हो। अब संसार के साथ वियोग क्या है कि जैसे आप गृहस्थ में और साधु हो जाओ तो भी हम तो वियोग कर दिया, ये भी उद्योग, ये बाहर का स्वांग है, साधु का स्वांग हो जाएगा। वियोग तब हो जब संग्रह और सुख भोग की इच्छा का त्याग हो जाए। ये दो तरह की इच्छा है, ये बंधन है खास। मेरे को आराम मिल जाए और मेरे पास वस्तु हो जाए, रुपया बढ़ जाए, मेरे पास आ जाए। इन दोनों में से किसी में या दोनों में जो आसक्ति रखते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो अक्षय सुख अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अब दोनों जो है, संग्रह की इच्छा और सुख भोग की इच्छा, दूसरे अध्याय के 44 में ये बात बताई है। 44 में दो चौका होता है, चार चार दो भाग है इसमें। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता, भोग और ईश्वरीय महाशक्त। इसका अर्थ ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दे, ऐसा नहीं कि छोड़ दे। आप भीतर से जो गुलामी है वो छोड़ दे, धन की गुलामी है वो छोड़ दे, भोगों की गुलामी है वो छोड़ दे। इसमें थोड़ा सा प्रयत्न करे, भगवान को याद करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, इससे छूटता है। ये बात एकदम पक्की है, इसलिए गुलामी मिट जाती है। पैसों की गुलामी रहती है, पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, इससे पैसे मिलते नहीं है। और त्याग करो तो पैसे आते हैं, ये बात इतनी पक्की बात है कि जिसकी नहीं मैं कह नहीं सकता। जहां मन से त्याग किया सुधर आता है। ये संसार की माया है, माया क्या है, ये छाया है। जैसे सूर्य भगवान के सन्मुख होते हैं तो छाया पीठ में होती है, और सूर्य से विमुख होते हैं तो छाया हमारे आगाड़ी होती है। उस छाया को आप पकड़ना चाहो तो कितना ही जोर से चलो छाया को पकड़ नहीं सकोगे। ऐसा नहीं कि आप छाया से आगाड़ी निकल जाओ और छाया पीछे रह जाए, ये कभी होने का नहीं है। कितना ही जोर से चलो आप, पर छाया से आगाड़ी ना जा सकते, उसे पीछे ही आप दौड़ते रहो और छाया पकड़ में आवेगी नहीं। और सूर्य के समान आप सामने हो जाओगे तो छाया आपके पीछे दौड़ती चली आएगी। खड़े हो तो छाया वहां खड़ी रहेगी, दौड़ो तो साथ ही साथ दौड़ेगी, छाया पीछे आती रहेगी। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान की तरफ आप चलोगे तो ये संसार की माया आपसे आप आवेगी, बिना बुलाए आवेगी। जैसे आप अनुभव करते हो, कोई आप मुसाफरी करते हो, उसमें सारे 10,000-50,000 रूपये आपने मिल गए तो आप समझते हो हमारी मुसाफरी सफल हो गई, 50,000 रूपये मिल गए। उन रूपयों को आप भगवान के लिए, दूसरों के उपकार लिए खर्च करते हो तो कहते हो रूपये सफल हो गए। दोनों बातें याद ध्यान देना। रूपये मिलने से अपना जीवन सफल मानते हो, वे रुपये अच्छे काम में लग जाए, पुण्य में लग जाए, भगवत संबंधी बातों में लग जाए तो सज्जन मानते हैं इतने रुपये हमारे सफल हो गए। तो रुपयों से आप सफल होते हो और पुण्य में लगने से रुपये सफल होते हैं, इतनी गलत बात है, उल्टी बात है। ऐसे भगवान की तरफ चलते ही ये माया पीछे रहेगी, आपके पास कमी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी कमी, आपसे आप आ जाएगी माया, बिना चाहे आ जाएगी। ये एकदम बात पक्की है। एक राजा थे, वो शाम की वक्त में अपने महल के छत पर घूम रहे थे, साथ में 5-7-8 आदमी थे, सब घूम रहे थे। उस किले के पीछे टूटे फूटे मकान थे, सोने पड़े थे, तो उधर दृष्टि गई राजा की। तो राजा ने पूछा, इस खंडहर में कभी एक संत आया करते तो वो यही ठहरते, अपने झाड़ू देर साफ कर ले, वहां रह गए, कोई मकान किसी कोई मालिक नहीं है, उसमें रहते थे। आजकल उन संतों को देखते नहीं, क्या बात है। तो खबर की, खबर करने से मालूम हुआ कि महाराज उनका शरीर शांत हो गया, ये तो मर गए। राजा ने कहा, देखो हमने चेत नहीं किया, बड़े संत औलिया महात्मा पुरुष थे, हम संत परिचित रह गए, अब कोई उनका शिष्य भी मिले तो थोड़ा सत्संग करें, हम भी लाभ उठावें, तो खोज करो। आदमी ने खोज करी तो पता लगा कि उन्होंने कोई शिष्य बनाया ही नहीं, शिष्य उनके ही नहीं। तो उनके साथ रहने वाले कोई तो खोज कर से मिले, एक साधु है, वो साधु मिले हैं, मैं उन संतों के साथ रहा हूँ, उनका सत्संग किया हुआ है तो उनको मिलाओ, अपने कोई बात करेंगे सत्संग की। राजा के जिज्ञासा थी, उनको बुलाए तो आदमी गया कि महाराज आपको राजा बुलाते हैं, चलो। वो बोलने के मैंने क्या कसूर किया भाई, राजा बुलाते हैं तो कोई आप होते, मैंने कसूर तो किया नहीं किसी का ही, राजा मेरे क्यों बुलाते हैं, राज तो बुला तो बुना वो तो कैद करेंगे। कि नहीं, कैद की बात नहीं है, तो वो कुछ आपसे पूछना सुनना चाहते हैं, सत्संग चाहते हैं, इस बात को बुलाए। तो प्रश्न हुए कि सत्संग वो चाहते हैं तो भी आवे कि मैं जाऊं, उनके चाहना है मेरे चाहना है, अगर वो चाह रहा थे यहाँ आ जाए मेरे चाहना मैं चला जाऊं। कहते महाराज आपका जवाब हम नहीं दे सकते, वो सत्संग चाहते हैं। अच्छा तो चलो अपने कुछ दिन चलो भाई, तो चले चले तो गांव में होकर के निकले, किले की तरफ जा रहे थे, वहां एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, एक कुतिया के छोटे छोटे बच्चे थे, कुतिया वहां नहीं थी, बच्चे खेल रहे थे। तो बाबा जी वहां बैठ गए थे, कभी लघु शंका करते होंगे, उन एक कुत्ते के बच्चे को अपने कपड़े में छिपा लिया, ले लिया साथ में। अब वहां पहुंचे तो लोग खबर करी कि महाराज उन संतों के साथ रहने वाले एक साधु मिले हैं, वो आ रहे हैं। बड़ा अच्छा है, तो राजाओं के बैठने उठने की बड़ा विचार रहता है, किसको आसन दिया जाए, किसको कुर्सी दी जाए, किसको न दिया जाए, बड़ा विचार रहता है। तो उन्होंने गलीचा बिछा दिया, एक तरफ बैठ गए, चाहे तो यहाँ बैठा देंगे। तो आए महाराज, खड़े हुए, बैठाए महाराज, बैठो। हाँ, तो वो राजा उन संतों को बुलाए तो उनको आसन दे दिया, अपने गलीचे पर बैठे, वहीं कह रहे यहाँ बैठ जाओ आप। तो बाबा जी बैठे तो और ढंग से ही बैठे, वो राजा की तरफ ऐसे पैर कर दिया और बैठ गए। राजा ने देखा कि बाबा लोग क्या जाने राजाओं के स्वभावों को, असभ्यता है, परंतु राजा बड़े चतुर होते हैं, वो जल्दी बोलते नहीं, गंभीर होते हैं। तो उसने प्रश्न किया राजा ने कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, तो बोले कि हाथ सिकोड़े तब से, तुमसे कुछ लेना होता तो यूं करते, तो पैरों को ऐसे कर देते, अब लेना कुछ नहीं है, पैर यूं कर दिए, फिर आसन में ठीक बैठ गए। राजा ने देखा कि असभ्यता नहीं है, ये शिक्षा है, कुछ लेना हो तो हाथ फैला दे, हाथ भी फैला, पैर फैला दिए। कहा महाराज आप उन संतों के साथ रहे हैं, कि महाराज बड़ी भगवान की कृपा हुई है जिससे मैं उनको संग मिला है, उनका बड़े संत महापुरुष, जीवन मुक्त तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष थे, उनके संग से उनके दर्शनों से पुण्य होता है, ऐसे महापुरुष थे। हम कुछ मिले, आपने महाराज उनसे कुछ लिया, कि राजन हम लिए नहीं, हम अपनी मूर्खता से ले नहीं सके, लेते तो हम भी वैसे बन जाते, हमने लिया नहीं। अब विचार आता है, देखो ऐसे संतों का संग मिला और हमने लाभ लिया नहीं, पर अब क्या हो महाराज, अब पिछता गए, क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत। तो आप फिर उनसे रीते ही रहे, कहते रीता तो रह नहीं सकता, सत्संग में ऐसी बात आवे है कि महत संघर्ष दुर्भव्यो अमोघर्ष। नारद जी ने लिखा है कि संतों का संग दुर्लभ होता है, अगम्य होता है और अमोघ होता है। दुर्लभ का मतलब ऐसे संत मिलते कम है, और मिल जाए तो उनको पहचानना मुश्किल है, और बिन पहचाने मिले तो ही उनका संग अमोघ होता है, निष्फल नहीं जाता, बिना जाने मिलने पर भी लाभ होता है, जान कर ले तो विशेष लाभ होता है, तो उनका संग निष्फल नहीं जाता। निष्फल जाता तो क्या महाराज, कहते उनके संस्कार पढ़ते हैं महाराज, उनके साथ रहे हैं तो कुछ है ही। तो महाराज वो बताओ आपके भीतर क्या असर पड़ा और कैसे पड़ा, कि जैसे बर्तन में घी डाल दिया जाए और घी निकाल ले तो चिकनाहट रह जाती है, ऐसे नहीं चिकनाहट ही चली जाए, ऐसे कस्तू की दिव्या में कस्तूरी रखी जाए और कुछ दिन में फिर निकाल लो तो दिव्या में सुगंध रह जाती है। ऐसे महाराज सुगंधी है, कुछ चिकनाट हो रह गया, हमने लिया नहीं। दिव्या लेती थोड़ा ही है, वो बर्तन घी को लेता थोड़ा ही है, परंतु रह जाती है चिकनाहट, सुगंधी रह जाती है। कि महाराज वो बताओ क्या चिकनाहट है, क्या सुगंधी है। देखो राजन, तुम राजे हो, ये हमारे फकीरों की बात, साधुओं की बात है, अब आप क्या करोगे। नहीं महाराज बताओ, क्या बुरा तो नहीं मानोगे। बुरा कैसे, मैं तो आपसे सत्संग करने के लिए ही आपको बुलाया है, तकलीफ नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बिल्कुल कुत्ते का बच्चा सामने कर दिया पिल्ला। कि महाराज हम तो समझे नहीं, ये चिकनाहट है, ये सुगंधी है क्या, ये नहीं। सुगंधी ये है कि आप में और कुत्ते के बच्चे में हमें फर्क नहीं दिखता। जैसे कुत्ते का बच्चा है ऐसे आपका शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ, हार्ड मन से बना हुआ ये शरीर है, ऐसा इसका शरीर है। ये भी देखो आंखों से देखता है, ये भी सुनता है, आप भी देखते हो सुनते हो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं मालूम देता। ये जो भीतर में समता है वो समतम योग उचित है, समता है ये योग है। इसका अर्थ ये नहीं कुत्ते का बच्चा जिस अगर इसे निरादर राजा का किया जाए, अथवा राजा को जैसे आदर किया जाए कुत्ते के बच्चे का किया जाए, ये तात्पर्य नहीं है। भीतर हृदय में कुछ राजा का असर पड़ेगा, धनवान ऐसा बड़े भारी महत्व है, तो यह समता नहीं है। इसे गर्द नहीं होती है भीतर में, वो मस्त रहते हैं। तो ये उनका संग होता है जिसमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये समता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनिचे व सुपाके च पंडिता समदर्शिना। आज तो समवर्ती हो गए, सब साथ एक बर्ताव खाओ पियो, रोटी बेटे के साथ बर्ताव करो, ये तो कुत्तों में ही है, ये कोई मनुष्यता थोड़ी है। मनुष्यता तो इस बात में है कि हृदय पर धनवान और निर्धन का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे धनवान से धनवान कोई बात पूछे तो उसको संत कहते हैं, वो गरीब से गरीब पूछेगा तो कोई बात कहेंगे, फर्क नहीं। को तो बात अच्छी बतावे और गरीब को ना बता, ये फर्क ही नहीं हुआ, किंचित बात ही फर्क नहीं। तो उनके समता होती है भीतर से, बड़ा छोटा शास्त्र की दृष्टि से एक ब्राह्मण है, एक तांडाल है, तो शास्त्र की रीति से ब्राह्मण वंदनीय होता है और वो भी पोषण वो भी होता है, उसे पालन पोषण करो, परंतु ब्राह्मण की दंडोत की जरूरत नहीं है, पालन पोषण की जरूरत है, वो फर्क नहीं। ब्राह्मण की बीमारी हो तो उसको मिटाओ, ऐसे चांदा की बीमारी में उसकी भी बीमारी मिटाओ, उसको रोटी कपड़ा की जरूरत है तो उसको भी रोटी कपड़े की जरूरत है, सेवा करते हैं, परंतु बर्ताव में भीतर भाव में फर्क होता है। ये शास्त्र की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से नहीं, पक्षपात की दृष्टि से नहीं। तो ये समता है, ये समता का नाम योग है, समत्वम योग उचित है। भीतर में न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है। बहुत सम्मान मिल जाए तो कोई प्रसन्नता नहीं, अपमान तिरस्कार हो जाए तो कोई दुख नहीं, निंदा हो जाए तो कोई दुख नहीं, प्रशंसा वाह 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 हो जाए तो कोई सुख नहीं। ये होता है, कभी गर्म हवा आती है, कभी ठंडी हवा आती है, कभी हवा सुहाती है, कभी नहीं सुहाती है। ऐसे लोगों का कभी प्रश्न है, प्रशंसा कर दे चाहे निंदा कर दे, आदर कर दे चाहे निरादर कर दे, उन्हें फर्क क्या पड़ता है। ये गृहस्थ थे सत्संग करने वाले, उनके मन में आएगी परीक्षा की, जो भी एक उस संत थे उस संतों को कहा कि महाराज आप भिक्षा करते हैं तो एक दिन मेरे घर भी कुटिया पवित्र करें, भिक्षा कर लें। अच्छा, कह दिया कि कल आप आ जाओ, ठीक है। उन्होंने बताया भिक्षा को जाते थे बाबा जी, जानते थे ये घर है, तो कोई बुला नहीं गया नहीं, ऐसे भी आ गए। तो आए जो है घर में जाने लगे तो दरवाजे गए, कहाँ जाते हो, निकलो यहाँ से। लेकिन मैंने कहीं गए आगे घर पर, किसने कहा था आपको, निकलो यहाँ से, निकाल दिए, चले गए पीछे अपना सुन। दूसरे रो गया कि मारा आप आए नहीं, अरे भाई मैं आया था वहां से, तुम चले जाओ, तो मैं चला गया। तो महाराज कल फिर आप कृपा करें और बेटा ले आओ। मैं दूसरे फिर तिरस्कार कर दिया। तीसरी बार कहा महाराज फिर भूल होगी, मैं ख्याल नहीं रखा, मैं दरवान को कह नहीं सका, अब आप आ जाओ, भिक्षा कराएंगे। आया तो सामने आ गया, सामने आकर ले जा गया, भिक्षा करी, भिक्षा करा दी। बोला कि महाराज मेरा अपराध हुआ, आप क्षमा करो। क्या अपराध क्या हुआ? कि आपको मैंने तिरस्कार किया, निकाल दिया, कोई तो अपराध हुआ ना मेरा, तो आप क्षमा करना महाराज, मेरी गलती हो गई, और गलती भी मैंने जान कही महाराज, अनजान में नहीं हुई, मैंने देखा, संतों को देखा, विश्वास कर दिया ऐसा। और फिर आपके तो कोई विकार नहीं आ गए आप, किसी इसमें निर्विकार की बात कौन सी है भाई, निर्विकार की बात कौन सी है? कुत्ते को तू तू करे दे जब आ जावे, तिरस्कार भाग जावे, तो कुत्ता आता है वो भी आ जाता है, टुकड़े आ जाता है, मैं भी टुकड़े के लिए आया, तिरस्कार चला गया, आज गया आज आया और आ गया, क्यों रोटी खानी है मैं तो कुत्ता का खाता है जैसे, इसमें बड़ी बात कौन सी है? तो उनके भीतर ऐसा भाव होता है, वो कोई राग द्वेष नहीं करते। आप कृपा करें साधु का तिरस्कार न करें, तो बात है ये ऐसी है, उनमें समता होती है ऐसी चीज, तो वो अपराध हो जाएगा, ऐसा न करें। परंतु बात ऐसी है, ये सामने स्थिति वाला जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है, आदर करो, निरादर करो, तिरस्कार करो, आदर करो, वर्षा करो, वाह वाह करो, अनुकूलता दो, प्रतिकूलता दो, तो क्या है? ये तो आते जाते रहते हैं, वे देखते हैं, कभी गर्म आती हवा, कभी ठंडी आती हवा, अब शीतकाल में ठंडी अच्छी नहीं लगी, बुरी लगती है, और गर्मी काल में ठंडी हवा अच्छी लगती है, वो गर्म बुरी लगती है, शीतकाल में बुरी गर्म हवा अच्छी लगती है, तो ये अच्छा लगता है, तो इंद्रियों का स्वभाव है, मन में हम क्यों फर्क करें? तो ऐसी स्थिति करने का नाम योग है। अब इसको थोड़ा ध्यान दे और सुने, बालक अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, इन तीनों को आप जानते हो, रोगी अवस्था हुई, निरोग अवस्था हुई, इनको आप जानते हो, तो आप तीन नहीं हुए हो, तीन अवस्थाएं हुई है। आप वही हो कि मैं बालक था तब पढ़ता था खेलता था, मैं जवान था तो व्यापार करता था, आज बूढ़ा हो गया शक्ति नहीं है, तो तीनों अवस्थाओं आप जानते हो ना, आप तीनों अवस्थाओं में रहे, अवस्थाएं बदली, आप नहीं बदले हो, तो आप जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हो, ये आपका योग है, और उन अवस्थाओं के अनुसार राजी नाराजी होते, ये है भोग है, ये सुख दुखों का भोग है, और सुख दुख भोगों से ऊंचे उठ गया तब योग है, ये गीता का योग है। तो वह कहा स्थिति, आप अपने सुख दुख में स्थिति नहीं करके, और जो आप स्वयं हो उनमें अपनी स्थिति है, तो गीता ने कहा है पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, पुरुष सुख दुखों के भोगने में हेतु होता है, कौन? पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो जा भोगता होता है, सुख दुख से ऊंचा उठ जाता तब कृष्ण दुख सुख स्वस्थ, जब स्वयं स्थित होता है तो वो सुख दुख में सम हो जाता है, क्यों? अपना तो वही रहा ना, आप वही रहे, सुख में भी आप वही है, दुख में भी वही है, संयोग में भी वही है, वियोग में भी वही है, घाटे में भी आप है, मुनाफे में भी आप वही है, घाटा मुनाफा आता जाता है, आप तो है जो भी तुम रहते हो, तो आप अपने में स्थित रहते हो तो तुम मुक्त हो गए, योग हो गया, सुख दुख के साथ मिल जाते हो तो भोग हो गया, संयोग हो गया। इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात नहीं है, उन दोनों को आने जाने में समझो, आगमा पाहिलो नित्या, आने जाने वाले अनित्य है, ताम स्थिति शो तुम सह लो, तुम्हारे पर असर न पड़े, दोनों में आने जाने में देख लो भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, अपने में फर्क क्यों पड़े? अब बाहर से ठंडी आवे, गर्मी आवे, वर्षा होवे, हवा चले, उड़ा पड़े, ठीक बात है, अपने बच्चे और ठीक तरह से, अब राजनारी क्यों हो अपने, अपने राजनारी नहीं हो, तो बदलता है, हम तो बदलते नहीं, तो अवस्थाएं बदलती है, संयोग वियोग होता है, संसार की वस्तुएं मिलती है वियुद्ध हो जाती है, तो हम अपने में क्यों बदले? अपने आप एक रहते हो, उस एक अपने में स्थित हो जाना है, इसका नाम है योग, ये योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग ही नहीं होता, दुख आता ही नहीं, आप तक पहुंचता ही नहीं। एक बाप बेटा जा रहे थे बाजार में होकर के, तो बाजार के लोग गाली देते हैं, बड़ा चालाक है, भगत बना है, ऐसे तिरस्कार गाली दे रहे थे। छोरे ने कहा पिताजी ये गाली देता है, अरे चल ये गाली देता है, अरे हमें लेनी नहीं है गाली, अपने लेनी नहीं है, बाजार में अपनी और चीज सब बिक्री करते हैं, वो छिप जाती है, लेना हो तो चिपकती है, हमें लेना नहीं है। कि गाड़ी देता है और देता है वो देता है अपनी हिलते उसके पास ही रहेगी, अपनी क्यों लड़ी है, चलो अपने लेवाड़ी है ही नहीं, गाड़ी लड़ी गुत्ता के गाड़ी देता है तो दे दी आपने ले ली, अब उसे हो गए आपने ले ली गाड़ी, गाड़ी देता रह दे अपने लड़ी नहीं है तो उसके पास ही रहेगी वो, हमारे पर आएगी नहीं, हम लेते ही नहीं, तो हम सुख दुख देते ही थे, हम तो बोझ बैठे थे आड़ने से, क्यों ले अपने। अब गाड़ी देने से आपका कुछ घट गया और गाड़ी न देने से कि आपका बढ़ गया। मैंने आपकी मारवाड़ी कहावत सुनी है कि गाड़ी सुख से घूम रहे उपड़े, गाड़ी घूम रहे उड़ जाए, क्या डेली डेली बिछरा जी हो गया बेचारा। संत तो कहते हैं मन निंदया यदि जन परितोष मेति नन्म प्रयत्न सुलभ हो जो मनोग्रहो में श्रेयोर्थिनोपुरुषा दुखा दुखा जितने भी धनानी परित्यजन्ति। अर्थ इसका ये होता है कि मेरी निंदा करके, मेरी गाली, मेरे को गाली दे करके, मेरा तिरस्कार करके लोग अगर राजी होते हो तो कितनी आनंद की बात है। लोग तो दूसरों को राजी करने के लिए बड़े पसीने से धन कमाया हुआ खर्च कर देते, दूसरे राजी हो जाए और ये गाली देकर राजी हो, मेरा खर्च कुछ हुआ ही नहीं, मुफ्त में कितनी कृपा है इनकी, जो खुश हो गए तो गाली देकर खुश हो गए, निंदा करके खुश हो गए, बहुत ही आनंद की बात, ये तो कृपा है उनकी, जो मेरा कुछ खर्च हुआ नहीं खुश हो गए, खुश करने के लिए खर्च करना पड़ता है लोगों को, तो भी समझते ऐसे खुश हो, अच्छी बात है भाई तुम खुश हो गए, ये कृपा है तुम्हारी, बहुत मेहरबानी है। अब उनको क्या फर्क पड़ता है, ये इसका नाम योग है, गीता इसको योग कहती है। अवस्थाएं सब तरह की आवेगी, जो संत महात्मा हो उनके सामने सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी और साधारण लोग उनके सामने सुख दुखदायी परिस्थिति आवेगी, फर्क क्या पड़ेगा, उनको खुद में फर्क नहीं पड़ता, और अज्ञानी है वो दुख योग नहीं तो फर्क पड़ेगा, उसने गाड़ी ले ली और वो लेते ही नहीं, हमारे से लेवाली नहीं है, क्या करे, माल अपने अपने बिक्री करे बाजार में सब बेच देते हैं, कुछ चिपक जाता है हमारे, हम लेते हैं तो चिपकता है, नहीं लेता, ऐसे कोई सुख दे कोई दुख दे, कोई आदर करे कोई निरादर करे, कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, उसमें हमारे फर्क ना पड़े, इसका नाम योग है, गीता योग कहती है। इसमें दो चीज नहीं होती कि जो समाधि लगे कभी उत्थान हो जाए, कभी समाधि रह जाए, कभी व्यवहार में आ जाए, वो तो हर दिन वैसे ही रहता है, चाहे नींद आवे तो वैसा ही है, स्वप्न आवे तो वैसा ही है, जागृत हो तो वैसा ही है, अवस्थाएं बदली बालक हो तो वैसा ही है, जवान हो जाए तो वैसा ही है, बूढ़ा हो जाए तो वैसा ही है, रोग आ जाए तो वैसा ही है, निरोग आ जाए तो वैसा ही है, उसमें आने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो निरादर में, निंदा में, बुखार में आनंद अधिक बढ़ता है, अधिक आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद क्यों, पाप कट रहे, हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति में पाप कटते हैं और मन की अनुकूल परिस्थिति में पुण्य कटते हैं, तो हमारे पुण्य कटना चाहिए कि पाप कटना चाहिए, तो प्रतिकूल से हम पाप कटते हैं, हमारे तो आनंद की बात है, खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है, इस बात से वो मस्त रहते हैं, क्यों उसमें सुखी दुखी हो, बड़ी ठीक बात भाई, ये तो होता है, संसार का स्वरूप है, सुख दुख जो परिस्थिति है ये संसार का स्वरूप है, तो संसार से ऊंचे उठ गए, अब संसार बिचारा क्या करे, तो ये तेरी सर्व संसार पर विजय होगी, वो जीत गए संसार हार गया, अरे सुख दुखी हो गए तो संसार जीत गया, भाई हम तो हार गए, हमारे हार हम क्यों लाए, अपने में कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, आदर करे निरादर अपने फर्क क्या पड़ता है, उसे क्या महाराज आपने बड़ी कृपा की, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कह रही तो कुत्ते में ही होता है, क्या विलक्षण हो इसमें, कुत्ता भी तू तू आ जाता है, कितने चल जाता है, तो ये विचार है कि बर पर असर कर पड़े, व्यवहार में फर्क पड़े तो कोई दोष नहीं है, व्यवहार कर ले अपना जैसा उचित समझे वैसा, परंतु सुखी दुखी क्यों हो संसार से, संसार से सुखी दुखी नहीं होते है, उनका आनंद निरंतर रहता है हरदम, जैसे हमारे यहाँ रात दिन दो होते हैं ना, अभी दिन है फिर सूर्यास्त हो जाए तो रात हो जाती है, तो रात और दिन दोनों होते हैं हमारे यहाँ, क्या सूरज में दोनों है, राम सच्चिदानंद दिनेशा तहने मोह दिशा लवलेशा, सूरज में रात है ही नहीं, तो उसको दिन क्या कहे, सूरज है उसमें नहीं कहते दिन है, दिन तो रात्रि की अपेक्षा दिन, दिन की अपेक्षा रात, दो नाम धोता दो जहाँ होते वहाँ ऐसा परम सूर्य भगवान है वहाँ रात है ही नहीं, वो तो दिन है ऐसे दिन का मालिक है। कैसी बात बढ़िया है, ऐसे उस आनंद में स्थित रहते हैं वे जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे तत्व भी होते हैं, वे मुक्त पुरुष हो गए हैं, जीवन मुक्त है वे, उन्हें दोनों से ऊंचे उठ गए। ये दोनों से ऊंचे उठना उस नाम है समता, तो समता का नाम योग है और दुख संयोग का वियोग नाम योग है, ये गीता का योग है। तो योग शास्त्र गीता का, वो गीता का अनुष्ठान हो गया। आप गीता जाने चाहे न जाने, इस समता में आप स्थित हो गए तो गीता के अनुसार का आपका जीवन पवित्र हो गया। और इसमें स्थित नहीं हुए, पढ़ लिए बहुत से पढ़ लिए, व्याख्यान दे दिया, आपको बता दिया, आपकी शंकाओं का समाधान भी कर दिया, पर सुख दुख का ऊपर असर पड़ गया, तो ये गीता का योग आया नहीं। साधन करो, साधन करते आ जाएगा, जो जो साधन करोगे त्यों त्यों आप में फर्क पड़ेगा। ध्यान दो साधन करने वाले भाई बहन, मेरी बात की तरफ विशेष ध्यान दे, आप में क्या फर्क पड़ेगा। असली रास्ता आपका चलेगा साधन का, तो उसमें ये फर्क पड़ेगा। अभी आपको क्रोध जल्दी जल्दी आ जाता है, जो जो सत्संग करोगे तो जल्दी जल्दी नहीं आएगा, थोड़ी देरी से आएगा। दूसरी बात, पहले साधन न करने पर योग क्रोध का वेग जोर से आता था, अब साधन करते क्योंकि उतने वेग से नहीं आता, थोड़े वेग से आता है। तीसरी बात, पहले वो द्वेष राग में ज्यादा ठहरता था, अब कम ठहरता है। तीन बात, बार बार आता है वो देरी से, जल्दी देरी से आएगा, जोरदार जितना आता था उतना जोरदार नहीं आएगा, और जो ठहरता था उतना ठहरेगा नहीं। ये बात साधक की हो गई, आप साधन भजन करके देख लो, ये फर्क पड़ेगा। साधन करता फर्क पड़ता है, फर्क देख देख मिट जाता है, कुछ फर्क पड़ा। मैंने जैसे भोजन किया, दो चार ग्लास लिए तो कुछ भूख मिटी, करते करते सर्वथा भूख मिट जाती है, सब तृप्ति हो जाती है। ऐसे ही साधन करते करते ये सब मिट जाते हैं, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड आदि सब मिट जाते हैं, दोष मिट जाते हैं, निर्दोष जीवन हो जाता है उनका। इन्हें उनके संग करने वाला भी लोग जीवन निर्दोष हो जाता है। ऐसे निर्दोषता प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। मैंने आरंभ में कहा था कि उस योग को बहना भाई सब प्राप्त कर सकते हैं, उस योग को धनी निर्धन सब प्राप्त कर सकते हैं, उस योग को हिंदू मुसलमान ईसाई सब प्राप्त कर सकते हैं, सबका अधिकार है। गीता के योग पर सबका अधिकार, ऐसा नहीं कह सकते हिंदू तो कर सकते मुसलमान नहीं कर सकते, अथवा मुसलमान कर सकते हैं यहूदी नहीं कर सकते, यहूदी कर सकते पारसी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसमें जो चाहे उसे दो, जैसे संतों ने कहा कि राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं सदा जीते सो ले जाए, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा नहीं सदा जीते सो ले जाए, राम नाम सपने में सबके लिए चौड़े बात है, जो जीत जाए वो ले जाएगा, सब मौज हो जाएगी, उसकी क्षमता आ जाएगी। तो ऐसी बात है सज्जनों, इस तत्व को प्राप्त करने के लिए ये सत्संग है, इस सत्संग से ये विद्या आती है। जैसे पढ़ाई करने से विद्या आती है ना, अंग्रेजी पढ़े तो अंग्रेजी आ जाती है, हिंदी पढ़े हिंदी आ जाती है, संस्कृत संस्कृत आ जाती है, ऐसे सत्संग करने से ये समता रहने वाली, एकदम शांति मस्ती रहने वाली ये विद्या आती है। ये ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, भगवद गीता, इस गीता के पढ़ने से ऐसी बात आती है। तो गीता में ऐसी बात लिखी, ये अपने साधक संजीवनी तत्ववेदनी टीका जो गीता परिषद की है, उस टीका से इसका विवेचन किया है। आप पढ़ो तो आपको अनुभव होगा। मेरे सामने क्यों ने कहा है कि गीता के पढ़ने से हमारी फर्क पड़ा है, हमारे जीवन में फर्क पड़ा है, बड़ी शांति आई है, अशांति दुख से नहीं मिटा है। तो ऐसा होता है, ऐसे गीता का रास्ता अपना जीवन बनाओ, उस जीवन के बनने से अपनी प्रसन्नता होगी, आनंद होगी, कुछ खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल समझने मात्र से शांति मिलती है, सत्संग के द्वारा शांति मिलती है। वो भी सत्संग है, पुस्तकों का पढ़ना अध्ययन करना महान सत्संग है, तो वो आप लोग घर में करो तो इससे बड़ा लाभ होता है। तो ये वास्तव में योग क्या है गीता का, ये आपको बताया, इसको योग कहते हैं गीता। वो भी प्राणायाम योग में है, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना भी योग है, परंतु ये योग सबसे बढ़िया योग है। गीता का योग निरा है, विचित्र है, गृहस्थ में रहते हो कर सकते हो, युद्ध करते हुए अर्जुन रह सकता है, युद्ध में भी सम रह सकता है, तो और क्या क्या है, सब में आप सम रह सकते हैं। नारायण 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 नारायण।